الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھر اور معاشرہ. الحمدللہ مدنی چینل کے ہر ہی سلسلوں کا، ہر پروگرام کا اپنا ایک مزہ ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں. اسی طرح ہمارا بھی یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ. گھر اور معاشرے سے متعلق ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں، موضوع لاتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ کو پہلے موضوع کا نام بتا دوں تاکہ آپ کی دلچسپی اور بڑھ جائے. تو ہمارا یہ موضوع ہے گھر اور معاشرے میں لالچ. تو میں آپ کو اپنے مبلغین کا تعارف بھی کرواؤں. ہمارے ماشاء اللہ خالد مدنی بھائی، ماشاء اللہ مرحبا، آپ تشریف لائے ماشاء اللہ. قربان مدنی بھائی، ماشاء اللہ مرحبا. پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، خوب اس کی برکتیں ہیں. درود و سلام کی تو کیا ہی بات ہے. درود و سلام پڑھیں گے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے گا، پیدا ہوگا، اور ذہ نصیب درود و سلام کے صدقے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے. خوب درود و سلام پڑھیے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور غور بھی کرنا ہے. اچھا، ایک چیز تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو فوٹو کسی اور کی نہ لائیں اپنے دماغ کے اندر، اپنے خیالات میں. اپنے آپ کو غور کریں، میں تو ایسا نہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے. بعض اوقات سننے بولنے والے جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو بہت ساری تصاویر دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات یہ فلاں ہے، اچھا یہ بات یہ فلاں ہے. تو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنی بھی تو اصلاح کریں نا. ہمیں سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور ہاں، گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو پھر اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کرنی ہے. تو چلیں شیخ چلی کی ایک حکایت آپ کو سناتے ہیں. شیخ چلی کو جو ہے وہ طرح طرح کے خواب دیکھنے کی ایک عادت تھی. اور بعض اوقات لالچی شخص بھی خوابوں کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے. راتوں رات امیر ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں. تو شیخ چلی کو بھی راتوں رات امیر بننا تھا. ایک دن وہ اپنے گہرے خوابوں میں کھویا ہوا تھا. کسی نے کہا شیخ چلی سے کہ یہ انڈوں کا ٹوکرا ہے، یہ لیجئے اور میرے گھر تک چھوڑ آئیے، میں اس کے بدلے آپ کو ایک انڈا دوں گا. لو جی، شیخ چلی صاحب نے اب خواب دیکھنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا. ابھی ان کے پاس نہ مرغی تھی نہ کچھ تھا. سوچا یہ انڈا لوں گا، پڑوسیوں کی جو مرغی ہے اس کے نیچے رکھوں گا، کچھ دن بعد اس انڈے سے چوزا نکلے گا، وہ بڑا ہوگا، مرغی بنے گی، اور پھر یہ اور انڈے دے گی، میرے پاس بہت سارے انڈے ہو جائیں گے. پھر ان سے جب بچے آئیں گے، چوزے آئیں گے، تو میرے پاس پھر مرغیاں ہو جائیں گی بہت ساری، اور مرغیاں میرے پاس اتنی ہو جائیں گی کہ پھر میں مرغیاں بیچ کر بکریاں لے لوں گا، ایک بکری لوں گا، پھر بکری بچے دے گی، تو میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو جائے گا، پھر ان کو کچھ بیچ کر میں گائے لے لوں گا، گائے کا کاروبار کروں گا، ایک گائے لوں گا، اس کے بچے ہوں گے تو بہت ساری گائے ہو جائیں گی، پھر میں گائے بیچ کر بھینس لے لوں گا، اور بھینس جب دودھ بھی دے گی میں دودھ کا کاروبار بھی کروں گا، اور بھینسیں بھی پالوں گا، تو میرے پاس بہت سارے ریوڑ ہو جائیں گے، بہت سارا پیسہ، بہت فراوانی ہو جائے گی، میں امیر کمیر ہو جاؤں گا، اور میرا پھر بڑا سا گھر ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، محل ہوگا، بہت پیسے والا ہوں گا. تو میرے پاس پیسے ہوں گے تو میرے بچے آئیں گے مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے کہ ابو پیسے دو، ابو پیسے چاہیے. تو میں ان پر غصہ کروں گا کہ اتنا خرچہ کر رہے ہو، میں نے اتنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے. بچے زیادہ ضد کریں گے تو ان کو ایک لگاؤں گا. تو وہ اس نے لگانے والے انداز میں ہاتھ گھمایا. جب ہاتھ گھمایا تو لگا وہ انڈوں کے ٹوکرے پہ، تو سارے کے سارے انڈے سارے نیچے آ گئے، اور زمین جو ہے وہ زردی سے زرد ہی ہو گئی. انڈے سارے جو انڈے تھے وہ لکوڈ بن گئے، بہ گئے. شیخ چلی صاحب کا اپنا تو انڈا کیا ملنا تھا، وہ جو جس نے ٹوکرا دیا تھا، اب لے بھائی بھر اس کے پیسے، بیٹھ جائے یہاں پر. تو मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अगरचे ये फर्जी हिकायत ही हो, लेकिन ज़रा गौर करें कि ख्याली दुनिया में तो हम भी रहते हैं। बड़ा होऊंगा, ये लूंगा, ये करूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। बिलफर्ज स्टूडेंट है, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, बड़ी जॉब करूंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, स्कूल जाना नहीं है, मदरसे जाना नहीं है, जामियतुल मदीना जाना नहीं है। तो फिर जब काम बंदा नहीं करेगा, या तो वो सुस्त काहिल होता है या काम चोर होता है और ख्वाब बड़े बड़े देख रहा है। काम धंधे पे जाना नहीं है, जॉब पे जाना नहीं है, बिजनेस पे जाना नहीं है और ख्वाब बड़े बड़े, तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया ही में रहेंगे, तो फिर शायद जो है वो हम कुछ ना बन सकें, बल्कि कई ऐसा होता है कि लालची लोग जहां होते वहां से भी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हल मिन मजीद और चाहिए, दुनिया तलबी, वो दुनिया तलबी ही में लगे रहते हैं। लालच की तारीफ क्या है कि किसी चीज से जी ना भरने और हमेशा ज्यादती की ख्वाहिश रखने को लालच और हिर्स कहते हैं। तो सिर्फ माल ही नहीं है, शोहरत भी तो है ना, और मशहूर हो जाऊं, और मशहूर हो जाऊं, और मशहूर हो जाऊं, और पैसा आ जाए, एक मकान नहीं दो हो जाए, दो नहीं चार हो जाए, तो बंदा लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन के पास चलते हैं। खालिद मदनी भाई क्या
बिस्मिल्लाह
फरमाएंगे लालच से मुतल्लिक?
रहमान रहीम। लालच एक वस्फ है जिसका ताल्लुक दिल से होता है। दिल में ये तमन्ना जागती है कि अभी ये है तो ये भी हो जाए, और ये भी हो गया है तो अब कुछ और भी हो जाए, यानी हल में मजीद की ख्वाहिश दिल में रहती है। उलमा ने इसकी तकसीम बयान फरमाई कि लालच जो है ये अच्छी भी है, बुरी भी है, और ऐसी भी है जिसका अच्छा या बुरा होना बराबर है, जिसको मुबाह कहा जाता है, यानी हिस्से मजमूम, हिस्से महमूद और हिस्से मुबाह। ये तीन किस्म बयान फरमाएं। कुरान करीम रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व उहदिरतिल अनफुसुश शुह, कि दिल जो है ये लालच के फंदे में है।
ओहो,
उलमा ने बयान फरमाया कि मुराद ये है कि ये लालच दिल से लगा ही रहता है, दिल इससे खाली नहीं होता, लिहाजा बेहतर ये है कि दिल को अच्छे लालच में लगा कर रखे
वाह वाह, क्या
ताकि ये बुरे से बच जाए।
बात,
रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबी वल फिद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्फ। ये सूरह आले इमरान है और इसकी आयत नंबर 14 है। तर्जमा में है कि लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया, दिल कुछ मोहब्बतों के साथ वाबस्ता ही रहते हैं। वो क्या मोहब्बतें हैं? इरशाद फरमाया, यानी औरतों की और बेटों की और सोने चांदी के जमा किए हुए ढेरों और निशान लगाए हुए घोड़ों की मोहब्बत, और मवेशियों और खेतों की, कि इनके लिए आरास्ता कर दिया गया है, लोगों के दिल इनकी तरफ मायल रहते हैं। लेकिन ये दुनिया है जिसके बारे में बिल आखिर ये है कि इसमें खत्म हो जाना है।
सही।
तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये सारी चीजें बयान करने के बाद इरशाद फरमाया कि ये जालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है, इसके तरफ दिल माइल रहता है। लालच के फंदे में है तो कहीं ना कहीं उलझेगा, फंदा है तो कहीं ना कहीं किसी को जकड़ेगा, किसी ना
बिल्कुल
किसी में
बिल्कुल,
पकड़ा जाएगा। लेकिन इरशाद फरमाया ये दुनिया की जिंदगी का है, इससे बेहतर वो है। फरमाया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और सिर्फ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है।
क्या बात, क्या बात है।
अगली आयत में इरशाद फरमाया वो अच्छा ठिकाना क्या है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल अनबिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप खबर फरमा दीजिए, आप लोगों को मुत्तले कीजिए, आप लोगों को बताइए, क्या मैं तुम्हें उसकी खबर ना दूं जो इन सारी चीजों से भी बेहतर है, ये
बिल्कुल
दुनिया के सारे साजो सामान से बेहतर है। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चीजें हैं, क्योंकि जितनी चीजों की मोहब्बत, माल, दौलत, आसाइश, ये सारी चीजें तो पिछली आयत में बयान हो गई,
सही,
इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो इरशाद हुआ कि इससे बेहतर वो है, लिल्लज़ीन तक़व इंद रब्बिहिम,
अल्लाह
वो है जो तकवे वालों के लिए उनके रब के पास है।
सुभान अल्लाह,
वो क्या है? जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा,
सुभान अल्लाह,
ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें रवा हैं, और दुनिया का तो सामान खत्म होने वाला था और वो खालिदीन फीहा,
सुभान अल्लाह,
तकवे वाले उसमें हमेशा रहेंगे।
क्या बात,
वो अजवाजुम मुतहरतुम व रिदवानुम मिन अल्लाह, और पाकीजा बीवियां और अल्लाह तबारक व ताला की रिजा, ये रब के पास है जो इस सारी दुनिया से बेहतर है। तो फिर बंदे को चाहिए कि जो दुनिया है खत्म होने वाली है, इसकी लालच को दिल से निकाले, और आखिरत है बाकी रहने वाली है, सुकून, चैन और इत्मीनान की जगह है, तो सबसे बढ़कर अल्लाह की रिजा का मकाम है, तो इसकी लालच दिल में पैदा करे ताकि अच्छाई की तरफ दौड़े और बुराई का साथ छोड़े, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मकबूल होता
क्या
जाए।
बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त बात। यानी दोनों रुख बताए गए कि हिर्स लालच करना है तो आखिरत का कीजिए ना, जो बाकी रहने वाली है। हम भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे जो फना होने वाला है, जो हमारे पास नहीं रहेगा। ये दुनिया का माल, असबाब, गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, मनसब, शोहरत, ये सब फना होने वाली है। और हम देखें कि फना होने वाली के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक मौके पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने एक बयान में तरबियत इरशाद फरमाई है कि किसी को कोई चेक दिया जाए, लाखों का दिया जाए या करोड़ों का, और उस पर लिमिट लिखी हो 40, 50, 60, 70, यानी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, और किसी को ब्लैंक चेक दिया जाए कि जितना चाहें इस पर लिख लें, तुम क्या पसंद करेंगे? ब्लैंक चेक, जो चाहें लिख लें। तो दुनिया की लिमिटेशन तो है ना, यूं तो एक दिन के बच्चे का भी नहीं पता, लेकिन इंसान ने जाना तो है ना, जी जी कर कितना जिएगा, कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, दिल आखिर दुनिया से चले ही जाना है। तो इस फानी दुनिया के लालच ने हमें अंधा तो नहीं कर दिया? कहते ना, लालच बुरी बला है, लालच
अरे
अंधा कर देती है। वो है ना, किसी ने कहा कि हम भी जब छोटे थे तो स्कूल में इस तरह के लालच बुरी बला है। अब बला क्या? तो किसी ने कहा ना कि कोई बतख थी तो वो सोने का अंडा देती थी, तो
हाँ जी
जो है वो उसको तो बड़ा मजा आया कि यार सोने का अंडा, वो लालची था, उसने बोला रोज एक अंडा लेता हूँ तो ये बतख ही जिबा कर दूँ, काट दूँ इसको तो सारे अंडे निकाल लूँ। तो वो रोज एक सोने का अंडा मिलता था, उससे भी गया और बतख से भी गया वो। तो आप देखें जरा, बाज लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं वक्त से पहले, बहुत ज्यादा शॉर्टकट में मिल जाए, फिर हराम में पड़ जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं। और ये याद रखिए कि दुनिया का जो लालची है ना, इसको सुकून नहीं है, क्योंकि इसका पेट ही नहीं भरता, इसका दिल ही
अरे
नहीं भरता, इसको करार ही नहीं आता। लाखों लाख रुपया रखा है, करोड़ों रखा है, प्लॉट रखे हैं, गाड़ियां रखी हैं, मुलाजिम है, अच्छा चले कुछ भी नहीं, किचन के अंदर कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली का भी इतना खाना तो होता ही है कि शायद हफ्ते 15 दिन का काम चल जाए, इतना राशन तकरीबन होता है। देखिए गरीब भी होंगे, आजमाइश वाले लोग भी हैं, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, कि हफ्ते 10-15 दिन का होता है, आटा होता है, चावल होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, या चले इतने पैसे होते हैं कि हफ्ता 15 दिन निकाल लें तो, लेकिन कहते हैं पूरा ही नहीं पड़ता, होता ही नहीं है। तो ये दुनिया के लिए रोते रहना रोते रहना, तो देखा ये कि जो रोता है वो रोता ही रहता है। ये कुर्बान मदनी भाई, लालच बुरी बला है, ये कौन सी बला है और कैसे बचा जाए?
अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि खालिद भाई ने इरशाद फरमाया कि लालच की तीन अकसाम बयान की, यानी लालच सिर्फ बुरी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही लालच का नाम आता है ना, तो फौरन हमारे जहन में एक अजीब सा तस्वीर आ जाता है, और अगर लालची का नाम आ जाए तो एक भयानक सी शक्ल, खौफनाक सी, जो वो ये भी खा जाए, बंदे की नजर अपनी जेब में हो जाए कि भाई अभी मेरे जेब से कुछ गया और गया, मेरा सामान अभी गया, वो ये लालची की ऐसी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। तो इसीलिए ये जुमले मशहूर हैं कि लालच बुरी बला है, लालच का अंजाम बुरा है, लालच में भलाई नहीं है। ये जो जुमले मशहूर हो गए हैं, इसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बुरी लालच के अंदर पड़ गए, गुनाहों वाली लालच के अंदर पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जुमले मशहूर हो गए हैं। लेकिन अगर हम अपने असलाफ को देखें तो हम वहां पर देखते हैं कि उनके अंदर भी हिरस था, उनके अंदर भी लालच थी, लेकिन उनके अंदर जो लालच थी वो नहीं क्या कमाने की लालच थी, वही जिस पर अभी गुफ्तगू हुई कि वो चीज कमाना भी हमारे सामने जो दो चीजें हों, एक खत्म होने वाली हो लिमिटेड हो वो लोगे, या जो चीज अनलिमिटेड हो खत्म ना होने वाली हो वो लोगे। समझदार शख्स वह है जो अनलिमिटेड चीज पर हाथ रखता है, ना खत्म होने वाली चीज पर हाथ रखता है। असलाफ ने यही किया है। असलाफ की जिंदगी किस तरीके से गुजरा करती थी वो हमारे सामने है कि एक बुजुर्ग थे, उनके जो है इंतकाल का वक्त करीब आ गया, नकाहत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तिलावत कुरान करीम जारी रखे हुए हैं, इसके
अल्लाह,
बावजूद भी वो नमाज पढ़ने के लिए तगो दो में लगे हुए हैं। उनसे पूछा गया, हुजूर इस वक्त भी? कहा इस वक्त ही तो ज्यादा जरूरत है।
क्या बात है,
ये
वाह,
हमारे असलाफ का अंदाज। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें समझाने के लिए इरशाद फरमाते हैं कि इस इंसान के पास अगर दो सोने की वादियां भी हो जाए ना, तो ये हिर्स करेगा, लालच करेगा, मेरे पास तीसरी क्यों नहीं, मेरे पास तीसरी भी हो जाए। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालिक कुल है ना,
बेशक
वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रब से जो चाहे अता हो जाए, वो तो जिस चीज पर हाथ रख के सोने की हो जाए, ओहद पहाड़ को चाहे सोने का हो जाए, लेकिन आपने किस चीज को, कनाहत को,
क्या बात,
फकर को,
क्या बात,
इन चीजों को आपने अपनाया, और इसी के अंदर अमन है, सुकून है, चैन है। वरना जब बंदा लालच के अंदर पड़ता है ना हुजूर, तो वो कत्ल पे भी आमादा होता है, वो हसद में भी आमादा होता है, वो बुग्ज में भी जो है उसके दिल के अंदर बुग्ज आ जाता है। यानी लालच की वजह से वो कौन सा गुनाह है जो बंदे के दिल के अंदर पैदा नहीं होता, और वो कौन सा गुनाह है जो करने पर वो तैयार नहीं होता एक लालच की वजह से। अब देखिए, एक शख्स था, उसने काम किया कि बच्चों को कहा कि बेटा एक जमीन है इस तरीके से, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। बातचीत हो गई, लेकिन वो बच्चे जो है वो दो भाई था, लड़ रहे हैं, जी मैंने ज्यादा खिदमत की है बाप की, तो मैं ये इस प्लाट का हकदार हूँ। बेटा इंसाफ से फैसला हो जाएगा, जरा सब्र रखो। दूसरा लड़ाई, नहीं ये तो जमीन मेरी है। 12 लड़ाइयां हुई दोनों के माबेन, और लड़ाई यहाँ तक पहुंची, लालच देखिएगा। लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला।
ओए होए होए,
बाप ने उसी प्लाट के कोने पे रोड पर दोनों की कब्र बना दी, एक की कब्र उस कोने पे और एक
ला
की कब्र इस कोने पे, इसलिए कि पूरी दुनिया को समझा सके कि देखो लालच का अंजाम क्या हुआ। कर जिसके लिए लड़ रहे थे ना, जिस फानी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, वो कितनी मिली, चंद गज की जगह। वो एक बादशाह का वाकया है ना, उससे बड़ा खुश हुआ एक बादशाह एक शख्स से, और कहने लगा कि तुम्हें जो है वो मैं जमीन अलाट करूंगा। तो सलामत कितनी? कहा बस तुम चक्कर लगाओ, एक दायरा बना लो, सूरज डूबने से पहले पहले जितना दायरा बना लोगे वो जमीन तुम्हारी। अच्छा जी, बड़ा खुश भाई, इतनी बड़ी जमीन और सूरज तो ना जाने कब डूबना है, डूबेगा, पूरा पूरा दिन है, और मैं तो आराम से बहुत लंबी जगह ले लूंगा। अब वो दौड़ना शुरू हो, चलते 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 चलते, अब उसने कहा मुझे वापस होना चाहिए, दायरा बनाना है, सिर्फ लंबा थोड़ी चलना है। अब वो वापसी मुड़ने के लिए सोचे, नहीं थोड़ा सा और ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। आगे उसको पहाड़ी नजर आती है खूबसूरत सी, कि यहाँ तक और पहुंचाऊँ तो कमाल हो जाएगा। लालच देखें, अब वो वहां तक पहुंचता, अब कहता नहीं अब तो मुझे मुड़ना चाहिए, सूरज बहुत तेजी से चल रहा है। जब वो वहां से मुड़ के सर्कल बनाने के लिए जब मुड़ता है और दौड़ लगाता है, तो वो देखता है, वो नोट करता है कि उसकी रफ्तार कम हुई भी है और सूरज तेजी से चल रहा है। वो होता है ना, कभी वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा होता है,
क्या
हालांकि वो गुजरता उसी टाइम पीरियड से, लेकिन ऐसे जब मवाके होते हैं तो ऐसा लगता है वक्त दौड़ नहीं रहा, वक्त उड़ रहा है। तो
सही,
अब वो कहे ये क्या, सूरज मुझसे तेज अभी यहाँ और अब यहाँ, अब यहाँ। असर के बाद तो उसने नोट किया कि सूरज चल नहीं रहा, सूरज तो पिघल रहा है, दौड़ नहीं रहा, वो तो पिघले चला जा रहा है। उसने और तेज दौड़ लगाई। अब जिसकी दौड़ने की भागने की आदत ना हो, लालच में कोई ऐसा काम कर गुजरे जैसे कर भी डालते हैं, बहरहाल वो दौड़ लगाता है, तो आखिर में जब वो पहुंचता है तो इसके पांव एक तरफ होते हैं और धड़ाम से वो गिर पड़ता है, और उसके सांस ज्यादा फूलने की वजह से उसको अटैक होता है और वो मर जाता है। उसका सर जो है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे होता है, और उसके पांव उस तरफ होते हैं कि जहां पर एंडिंग पॉइंट था, यानी वो जो पड़ा हुआ है ना, वो वहां से उसका सर्कल उसका मुकम्मल हो रहा है। उसकी कब्र वहीं पे बना दी गई,
ओए होए होए,
और कब्र के ऊपर एक कतबा लगाया गया, और उस कतबे के ऊपर लिख दिया गया इसको इतनी ही जगह काफी थी,
ओ हो,
इसके लालच में
है।
हमें काफी बहुत कम होता है। अल्लाह ने इंसानी निजाम को, इंसानी जिस्म को, इंसानी जिंदगी को जो सर्वाइव करना है उसको ऐसा यूटिलाइज किया है, तो खूबसूरत और हसीन बनाया है, इसके लिए बहुत ज्यादा तगोदो, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। बंदा उस पर अगर राजी हो जाए ना जो अल्लाह ने उसको दिया है, तो अल्लाह करीम उसमें भी बरकत अता
ये
फरमाए।
बड़ी प्यारी बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन। साबिर और शाकिर, कनात करने वाला कभी परेशान नहीं होता, उसको कुदरती सुकून मिलता है। और जैसे हमारे कुर्बान मदनी भाई ने बताया ना कि बाप ने को ज़मीन देनी चाहिए, दो भाई लड़े आपस में, एक दूसरे को मार दिया और उस प्लॉट पे कब्र ही बनी। मुझे भी एक खालिद भाई, किसी ने जेन्यन वाक़िया बताया। वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, यानी हालत नज़ा लग रहा था कि अब ये नहीं जी पाएंगे। तो तीन भाई थे, तीनों बाप के पास बैठे हुए, लग ऐसा रहा था बाप का आखिरी वक्त है। तो
अल्लाह
तीन भाई में से एक ने कहा कि यार आप डॉक्टर को बुला लें जल्दी से। तो एक जाने लगे तो दूसरे भी साथ निकलने लगे। बोला भाई आप कहाँ जा रहे हो, अब्बा की तबीयत ऐसी? बोला मैं वकील को लेने जा रहा हूँ। बोला क्यों? बोला अब्बा का आखिरी वक्त है, वसीयत तो करवा लूँ। ये इस पर इनकी कोई बहस चली, इतने में ना डॉक्टर आया ना वकील आया, अब्बा का इंतकाल ही हो गया। तो वाकई ये दुनिया का लालच, ये मुझे मिल जाए, ये मेरे पास आ जाए, इसका माल भी आ जाए, हिर्स और लालच बढ़ती रहती है। दूसरों के माल पे नज़र होती है, दूसरों की गाड़ियों पे नज़र होती है, दूसरों की कोठियों पे नज़र होती है। इसी तरह बाज़ों का शादी ब्याह के मामलात होते हैं, कई खानदानों में होगा। हम किसी पर बदगुमानी ना करें, हुक्म ना लगाएं, लेकिन अपनी नीयत पर तो गौर करें कि मेरे बेटे की शादी है तो मेरी बहू आए तो ये लेकर आए तो वो लेकर आए। बल्कि आजकल तो ऐसा दौर है कि डिमांडें की जाती हैं, लिस्टें दी जाती हैं, मकान मांगे जाते हैं, गाड़ियां मांगी जाती हैं, सलामी में फिर बुराइयां की जाती है, सलामी में ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया, तो गोल्ड की चीज़ नहीं दी, तो बच्ची को जहेज में गोल्ड कम दिया है। अरे उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा उठा के दे दिया, आपकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही है, सारी जिंदगी उस बच्ची को, बेटी को, बहन को ताने मिल रहे हैं कि तू लाई क्या थी है। उस बाप के जिगर को तो देखिए कि उसने अपना टुकड़ा, दिल का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, पाल पोस के उसको बड़ा किया। किसी मुबल्लिग ने क्या प्यारी बात कही पिछले दिनों एक जगह बयान में मैं बैठा था, बोला किसी की बच्ची हो, बेटी छोटी 7-8-10 साल की, और कोई खानदान का शख्स ही कहे, महरम उसके मामू चाचू वगैरह, कि भाई ये जरा बच्ची मुझे दे दो, दिल हिल जाएगा यार, मैं अपनी बच्ची कैसे दे दूं, अरे कैसे मेरी बच्ची मांग रहा है। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए, मुसलमान है, शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, वही बाप उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करता है, जो भी उसकी शादी की उम्र हो 18, 20, 22 साल जो है, फिर अपने हाथ से उसका मतलब निकाह करके और उसको फिर सामान दे के रुख्सत करता है, फिर उस बच्ची को ताने सुनने को मिले, तू लाई क्या थी, तूने क्या किया है, तेरे माँ बाप ने तुझे दिया क्या है, तो उस बाप के दिल से तो पूछे ना, कि जिसने अपना जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। लेकिन कई ऐसे लालची लोग हैं, बाज़ुकात होते हैं, ताने देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, अच्छा बाज अपने तौर पर यूं सखी अपने आप को जाहिर करते हैं, अरे गरीब लोग थे और हमने तो जो ना सोचा कि चलो किसी गरीब की बच्ची ले आए, तो हमने तो जो है वो कहा कि यार कुछ देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, बस अपनी बच्ची सादगी से जो ना रुख्सत कर दें दो जोड़े में ही, तो हमने तो कुछ भी नहीं लिया, अल्लाह ने बहुत दिया, हमने सब कुछ खुद किया, ये बताना क्या है, ये डिग्रेड करना नहीं है, ये उसको जलील करना नहीं है, ये एहसान जताना नहीं है, अगर आपने किया तो सबको बताने की हाजत क्या है, इसको डेली टॉर्चर देना कि तू कुछ नहीं लाई थी, गरीब माँ बाप की बेटी थी, ये सब कुछ हमने दिया है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा अपने दिल पर हाथ रख के जरा गौर करें कि अगर हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा करे तो हमारा कलेजा फट ना जाए, अगर हम किसी की बच्ची के साथ कर रहे हैं, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, तो उस बाप और भाई के दिल पर गौर करें कि जिसने अपनी बच्ची आपको दे दी है। तो कभी भी किसी से बुरा सलूक ना करें, और ज्यादातर लालची लोग, इनकी लालच पूरी नहीं होती है, वो कहता ना कि बहनोई या दामाद अच्छे भी होते हैं, माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन उमूमन जब ये नाम आता है तो यही होता है कि जब ये आते हैं तो रेस्पेक्ट, स्पेशल प्रोटोकॉल, और खानदान वाले सारे डरते हैं कि यार इसको तकलीफ हो गई तो हमारी बच्ची को तकलीफ होगी, हमारी बहन को तकलीफ होगी, सुसर जो है वो दामाद से यूं डरता है कि मेरी बेटी का घर खराब ना हो जाए, भाई अपने बहनोई का ख्याल यूं कि मेरी बहन को तकलीफ ना हो, उसका घर बसा रहे, उसकी खुशामद है, उसकी मिन्नत है, ये क्या अंदाज है, ये क्यों चाहिए हमें प्रोटोकॉल, ये किसके लिए चाहिए। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह के लिए आजी इख्तियार करें, और कहते हैं ना दुनिया मकाफत अमल है, अगर आज हम किसी के दामाद हैं, कल को हमारी बेटी हुई तो हमारा भी तो दामाद आएगा, अल्लाह ना करे ये चीज़ रिपीट ना हो जाए, पलट कर ना आ जाए, तो अल्लाह आफियत का मामला फरमाए।
वही बात है जो आपने इब्तिदा में इरशाद फरमाई ना कि हिर्स जो है, लालच जो है, ये सिर्फ पैसे का नहीं है,
सही
वहाँ इज्जत का लालच, स्टेटस का लालच,
ये
अगर मैं
फरमाए,
कहीं आऊंगा तो जनाब मुझे सबसे नुमाया मकाम देना चाहिए, जैसी सीट मेरी हो वैसी किसी और की ना हो,
सही बिल्कुल,
जो मुझे खाने में दिया जाए तो वो किसी और को ना दिया जाए, या चले सबको भी दिया जाए तो सबसे पहले मुझे दिया जाए।
पहले दिया
ये
जाए,
सारे वो चीजें हैं जो मर्तबे की ख्वाहिश है बंदे की,
क्या बात,
मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे फोकस किया जाए। हम नजरों में क्यों आना चाहते हैं, हम किसी के लिए इतना अहम क्यों होना चाहते हैं। साथ ही आपने गुफ्तगू में ये बात भी इरशाद फरमाई कि गरीब की बेटी से शादी करने के बाद उसको जताते ही रहते हैं। एक मिसाल बयान की जाती है, बेसिकली तो वो खवातीन के हवाले से बयान की जाती है,
जी
लेकिन मैं यहाँ इसको वसअत देकर मर्दों की तरफ भी लाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल ये बयान की जाती है कि ना समझ औरत जो है वो अपने शोहर को गुलाम बना के रखती है और फिर खुद गुलाम की बीवी बन के जिंदगी गुजारती, जबकि अकलमंद औरत जो होती है वो अपने शोहर को बादशाह तस्लीम करती है और फिर बादशाह की बीवी बन के इज्जत
नहीं, आप
की
बात
जिंदगी
बड़ी
गुजारती।
प्यारी बात, बड़ी
इसी
प्यारी बात,
तरह जो शोहर है वो भी तो अपनी बीवी को मलका बनाने की कोशिश
है,
करे ताकि इज्जत की जिंदगी, सुकून की जिंदगी
खुद
रहे,
भी बादशाह सलामत बन
खुद भी
गया।
बादशाह सलामत बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जब आप अपने साथ रहने वाली को, जो आपकी शरीक हयात है, जिसको कुरान आपके लिए लिबास करार दे रहा
क्या
है,
बात है,
उसमें आप लिबास में और बंदे में कोई ऐसा फर्क थोड़ी होता है, लिबास और बंदा तो फिर जिस्म के साथ साथ ही
तो
होता है।
ज्वाइंट है उसके
जो
साथ साथ,
स्टेटस अपने लिए मुंतखब कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए मुंतखब करें। इज्जत का हरीस होना चाहिए आपको, लेकिन इज्जत दे देंगे ना तो आपकी हिर्स भी पूरी हो जाएगी,
हाँ हाँ
आपको ज्यादा लालच शो करने की जरूरत नहीं होगी। जब सिर्फ आप डिमांडिंग बनकर रहें और गिव के लिए तो आपका हाथ खुला हो, टेक के लिए आपका हाथ खुला हो, गिव के लिए आपका हाथ खुला ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब अल्लाह तबारक व ताला ने अहकामात अता फरमाए ना, उनमें बेहतरीन चीज यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह एतदाल अता फरमाई।
क्या बात है,
जब बंदा किसी चीज को चाह रहा है तो क्या पूरी करने की भी तरफ है? अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इज्जत दी जाए तो क्या हम इज्जत देने वाले भी हैं? मांगने के लिए तो हमारे हाथ बिल्कुल खुले हैं, जबान खुली है, इशारे खुले हैं, और जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन जब कोई देने के लिए आता है, यानी हमें अपने पास से किसी की डिमांड पूरी करनी हो, तो फिर ये देखो जरा ये कैसा आदमी है, इसने देखो कैसे कर दिया, अरे इतना बड़ा मुंह खोल लिया, अब इनको तो मांगते हुए शर्म नहीं आई, आपको आई थी? उस वक्त हम देख नहीं रहे होते, पता जब चलता है जब अपने ऊपर बीतती है। जब बीते हैं ना, उससे पहले ही बंदा, वो आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, मकाफाते अमल को ही जहन में रखे, तब भी इसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी।
रिएक्शन का रिएक्शन है ये।
जी
मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इन बातों से ये भी एक जहन में आया कि बाज़ औक़ात होता है घर में कोई तकरीब है, घर में कोई तकरीब की, तो शादी ब्याह है या कोई और फंक्शन है ऐसा जिसमें लोग लिफाफे लाते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं नहीं 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 क्या ज़रूरत थी, आपने जहमत की, लेकिन जब ये लिफाफा खोलते हैं, ओ हो इतना बड़ा सेठ बनता है, ये लो 100 रुपये दे के चला गया, खाना 500 का खाया, चार आदमी साथ ले आया, पर हेड 500 आए तो 2000 का खाना खा गया, लो जी 100 रुपये थमा के चले गए, ये 500 रुपये निकले, देखो
सर
इतने
ये भी
बड़े
तो बुरी
लिफाफे
बात
में।
है ना, ये भी तो गलत बात है ना, जो बात है वो तो फिर
वो तो दावत में आए थे, खाने का
दावत।
बिल तो देने आए नहीं थे। अच्छा फिर ये कहना कि नहीं नहीं आपने जहमत की, आपने क्यों तकलीफ की, हमने कोई इसलिए दावत तो नहीं की थी, बाकायदा वो लिफाफे खुलते हैं, एंट्रियाँ होती हैं, तबसरे होते हैं, अच्छा अच्छा लिफाफा निकले, मज़ा किसको नहीं आता। ओ भाई यार माशाल्लाह, इनसे तो तवक्को नहीं थे, 10,000 5,000 के दो नोट निकले, यार मज़ा आ गया, इसका नाम तो सबसे ऊपर लिखे। और बेचारे जिन्होंने 100 500 दे दिए, आजकल तो बोलते हैं 100 500 में होता क्या है यार, देखो कैसा है, कंजूस है, बकील है, पर यहाँ गीबतें शुरू हुई है, तो क्या
बिल्कुल
कहेंगे, ये भी कोई लालच का फैक्टर है कि नहीं है ये?
लालच का फैक्टर है। असल में ये भी चीज ना कि जैसा हमने किया है हमारे साथ वैसा ही हो, ये होना नहीं चाहिए।
सही।
आप अगर कोई अच्छाई करें, अल्लाह करीम की तौफीक से मिलती है, अच्छाई की तौफीक भी अल्लाह करीम सआदत ये तौफीक से देता है अपनी।
बेशक
अगर आपने किसी के साथ भलाई की है ना, मेहरबानी फरमाए, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे,
आमीन आमीन,
हम अच्छाई अल्लाह की रजा के लिए करें।
बेशक बेशक, क्या
दुनिया में ही बदला ले लोगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला के सामने क्या क्या
बात,
अर्ज
ये
करेंगे?
भी होता है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तो इतना दिया था, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये किया, ऐसा नहीं, अल्लाह की रजा के लिए अमल हो, कोई अगर बुरा बिलफर्ज कर भी रहा है तो माफ कर देना, क्यों उसका मकसद आप चाहते हैं कि मैं इसका बदला करूं, यूं करूं ये, और अपने दिल से गौर करें, मेरे दिल में लालच तो नहीं है मनसब का, शोहरत का, इज्जत का, पैसों का, कोई ना कोई लालच अगर छुपा हुआ है मनफी नेगेटिव, उसको दूर करें, ये अंदर से खाता है बंदे को, बंदा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, बंदा हसद में मुब्तला हो जाता है, बंदा दुश्मनी पाल लेता है, कीना होता है, ये होता है ये तरक्की क्यों कर रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा कई लोग मिलते हैं और बंदे कई लोग, अरे आप तो अमीर आदमी हैं, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो यहाँ पहुंच गए, आप तो यूं हैं, आप तो यूं हैं, आप कहाँ बात करेंगे, आप तो मदनी चैनल पर आते हैं, आप तो बड़े जिम्मेदार बन गए, आप तो पैसे वाले बन गए, आपके पास तो कार है, तो ये क्या बातें हैं, ये जो है वो एहसास कमतरी है, या उसके मनसब से हमें तकलीफ हो रही है, उसके पैसे से हमें तकलीफ हो रही है, आखिर है क्या प्रॉब्लम, या हमारे दिल में कहीं छुपा हुआ लालच तो नहीं है कि सब मेरे पास नहीं है इसके पास क्यों आ गया, हम हसद में तो नहीं है कि इसका चला जाए मेरे पास आ जाए, अपने दिल पर गौर करें, फिर जो अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र भी तो अदा करें, उस रब ने कितनी नेमतें दी, कितनी नेमतें दी, लेकिन बंदा है कि उसका दिल ही नहीं भरता, एक कुत्ते की जबरदस्त शिकायत है, अब जबरदस्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये
सबक के
देख
लिए तो
लीजिएगा,
वैसे जबरदस्त
हाँ सबक बहुत जबरदस्त, इसमें एक मैसेज तो है, मैसेज तो है कि जिनका पेट ही नहीं भरता, दिल ही नहीं भरता, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तो एक कुत्ते का एक वाकया है, या फर्जी ही होगा या सच्चा या जो भी है, बहरहाल है वाकया, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, एक कुत्ता भूखा था, भूखा कुत्ता इधर उधर मुंह मारता है, उसको मिल गई एक हड्डी, हड्डी उसने दबाई मुंह में, और वो ये कुत्ते को बाजू का देखा है, वो हड्डी लेकर भागता है, जो मिल जाए इधर उधर कोने खांचे में कि कोई और कुत्ता छीन ना ले, मैं आराम से खाऊंगा, हड्डी ली और भागा इधर उधर गया, पानी उसको नजर आया तालाब सा, तो उसने तालाब में झांका, जब तालाब में झांका तो उसको अक्स नजर आया, अब कुत्ता तो कुत्ता ही था जानवर, उसको क्या पता कि ये क्या नजर आ रहा है, कि जब उसको अक्स नजर आया तो उसके हुआ कि ये जो दूसरा कुत्ता है इसके मुंह में भी हड्डी है, मैं इसकी ये वाली हड्डी छीन लूं, मैं इसकी ये वाली हड्डी छीन लूं, ये भी खा लूं, तो वो खाने के लिए उसने मुंह खोला, जब खाने के लिए मुंह खोला तो उसकी अपनी भी हड्डी पानी में चली गई, वो क्या मिलनी थी, वो तो अक्स था ही है, तो ये बाज़ औक़ात होता ही है, बहुत सारे लोग देखें परेशान होते हैं, आजमाइश में पड़ते हैं, देखें एक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मशक्कत करना चाहिए, तजर्बेकार लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो शॉर्टकट तलाश करते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पर चलते हैं, ये प्लॉट ले लिया, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, ये ले लिया, ये काम कर लिया, बेतरतीब चलते हैं, अंधाधुंध चलते हैं, वक्त से पहले बहुत ज़्यादा चाहने की करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये कर्जे पकड़ते हैं, ये कर्जे लेते हैं, फिर बाज़ का जिसको हम कहते हैं ना आम उर्दू में टोपी बनाते हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले लिया, इसके इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले लिया, उनको जाहिरी तौर पर दुनिया की चमक नजर आती है, यार ये प्लॉट ले लूँ 10 लाख का है, 12 लाख में बिक जाएगा, 2 लाख का नफा होगा, कुछ इसको दे दूंगा भाई 10 लाख आप इन्वेस्ट कर दे, यूं करके वो बाहर आमद नजर आ रही होती है, बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, लोगों के पैसों पे काम कर रहे होते हैं, अपने जितनी चादर है उससे पाँव बाहर निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब लॉस होता है तो लोगों का लिया वो भी गया, अपना भी गया, अब कर्ज चुकाता रहे, अब मुंह छुपाता रहे, छुपता रहे, इज्जत भी गया, पैसा भी गया, फिर वो एक आवाज तो आती है ना, साउंड तो आता है कि लोगों का पैसा खा गया, लोगों का पैसा निकलता है, ये दे नहीं पा रहा, तो इतनी बड़ी छलांग मारने की जरूरत क्या थी, अपनी चादर से ज्यादा पाँव बाहर निकालने की जरूरत क्या थी, क्यों लोगों का पैसा पकड़ा, क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपने सर पे बवाल लिया, जितनी ताकत थी उतना करते तो ठीक है, करना चाहिए लेकिन अपने बलबूते पे करें ना, किसी का पैसा पकड़कर, बाकी मैं आपको ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि कभी काम करना हो तो अपनी जितनी ताकत और हैसियत है उतना
क्या
करें,
बात,
ये लंबी लंबी छलांगे ना मारें कि एक ही छलांग हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी और फिर इतना माइनस में आ जाएंगे, यकीन करें मैंने कार वालों की कारें बिकती हुई देखी है, जाती मकान वालों के जाती मकान बिकते हुए देखे हैं, भाइयों में नफरत, पार्टनर में नफरत, यहाँ तक कि जब बुरा वक्त आता है कहते ना साया भी साथ छोड़ जाता है, औलाद भी छोड़ के चली जाती है,
अच्छा
तो क्या जरूरत थी, अपनी लिमिटेशन में रहें, ठीक है ट्राई करें, स्ट्रगल करें, लेकिन एक लिमिटेशन बना लें कि मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, तो फिर जो अल्लाह से दुआ भी करें अपने तरीके से बढ़ते चले जाइए, तो
अपने
हमारे
वसाइल हैं,
या
अगर इनको इख्तियार करते हुए बंदा आगे बढ़ता है ना, तो इस पे तो कोई कदगन नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है ये। अगर हलाल की तरफ तगो दो करेगा तो अल्लाह करीम इसके लिए बरकत भी रखेगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैय, अल्लाह तबारक व तआला ने बैय को हलाल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक ज्यादातर मुनाफा जो है वो बंदे को कारोबार के जरिए से मिलता है, ज्यादातर रिस्क जो है वो कारोबार के जरिए से मिलता है, और उसमें वसत रखी गई है, बंदा तरक्की करेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि अभी मैंने कदम उठाया है ना, तो अभी अर्श की बुलंदियों को छू लूं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये फरमा
ग्रेजुअली किसी को हम देखते हैं ना कि वो बहुत ऊंचे मकाम पर है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, उसकी वो पहुंच नजर आ रही होती है, उसके पीछे जो स्ट्रगल है ना
बहुत प्यारी
वो
बात,
नजर नहीं आ रही होती।
स्ट्रगल प्लस टाइम पीरियड,
जी, स्ट्रगल प्लस टाइम पीरियड, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ही
क्या
बंदा
क्या
आगे बढ़ता है, और फिर कभी एक ऐसा मौका आता है कि वो आगे सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ने लगता है। आप देखिए कि जब इधर उधर का पैसा लेकर इन्वेस्ट करता है ना बंदा, इन्वेस्टर्स का दबाव ना इंसान को जीने नहीं देता,
ठीक
फिर
कह रहे हैं,
बंदा फोन नहीं उठाता, फिर चाहे उसको यूं समझे कि उसके नफे के लिए फोन आ रहा था ना, वो तब भी समझेगा यार कोई नंबर बदल के कॉल कर रहा है। अपने धोखे, अपने 2 नंबरी की वजह से अपना ही नुकसान कर रहा होता है। नंबर तो आपका एक ही है ना, यूज तो आप उसी को करेंगे, फिर बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि यार अब वो कारोबार में वो रेल पेल नहीं रही, वो बात नहीं रही। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने लालच की थी, और लालच के फंदे ने हमको जकड़ के जमीन पर गिरा दिया। इससे जरा बाहर आए, लालच से बचने की जो एक बेहतरीन जरिया है ना, वो है कनाअत।
क्या
अल्लाह
बात,
रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला के थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है,
सुभान अल्लाह
अल्लाह करीम उसके थोड़े अमल पर राजी
सुभान
हो
अल्लाह,
जाता
आपकी इस बात से मुझे ये आया, देखिए आजकल प्रोफेशनल जो है लोगों का एक दौर है कि भाई प्रोफेशनल
है।
करना चाहिए,
प्रोफेशनलिज्म,
हाँ जी होना चाहिए और लोग करते हैं, स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन कई लोग बहुत फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, यहाँ जॉब की यहाँ छोड़ी, यहाँ की यहाँ छोड़ी, ठीक है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और बंदे को करना चाहिए लेकिन कहीं एक टाइम तो गुजारे, लेकिन जब सीवी आती है ना सीवी उस पर लिखा हो कि इसने यहाँ भी किया यहाँ भी किया, तो सीवी जो स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि इसने कितना ड्यूरेशन वहाँ गुजारा, 3 महीने गुजारे, चौथे महीने कहीं और, 6 महीने गुजारे, 7वें महीने कहीं और, हर साल ही कंपनी चेंज कर रहा है, तो या तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें हैं कि आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आपकी सीवी भी खराब होती है, मेरे स्पेशली प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इसको नोट करें, ये हमने देखा ही है, बजायर सैलरी आपको लगता है कि यार वहां मुझे 40 मिल रही थी या 45 मिल जाएगी, या 45 थी 50 मिल जाएगी, ठीक है खर्चे बढ़ रहे हैं सब कुछ है, लेकिन एक जगह काम करने में बंदे की क्रेडिबिलिटी बनती है, बंदे का एक नाम होता है, उसको एक ऑनर मिलता है, इज्जत मिलती है, और जो बार बार कंपनियां चेंज करता है, ठीक है एक टाइम पीरियड आता है, आपने साल 2 साल 3 साल निकाले, अच्छी पोजीशन पे निकाले और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ठीक है इसको अवेल करना चाहिए अच्छे तरीके से,
बिल्कुल
आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जल्दी जल्दी करते हैं, यकीन करें ये अपनी सीवी खराब करते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब करते हैं, लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते, मार्केट में वो बदनाम हो जाते हैं, कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं होता, यार इसने 10 कंपनियां बदल ली, मेरे पास से पता नहीं कब चला जाए। तो जो अल्लाह ने दिया उसमें सब्र और शुक्र भी तो करें ना, ठीक है आगे बढ़े तो, लेकिन एक जगह जम भी जाए क्या पता वही कंपनी आपको तरक्कियां दे दे,
क्या
तो
बात है,
इसमें जरा सोचना चाहिए ये कि ये भी फैसला है ना, ये क्या फरमाएंगे कुरबान भाई आप?
ये हकीकत है कि अगर गाड़ी भी तेज रफ्तार से चले ना तो उसको भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है।
लिमिट है ना उसकी,
लिमिट
स्पीड
है ना, अगर
लिमिट है।
स्पीड लिमिट है। इसी तरह अगर खाने को बहुत तेज चूल्हे पे एकदम पकाने के लिए रख दें तो वो भी जल जाता है,
सही कह
अंदर
रहे
से कच्चा रह जाएगा लेकिन बाहर से बहरहाल जल जाएगा। तो स्पीड बिल्कुल काम की होनी चाहिए, अगर किसी के अंदर काम की स्पीड है और कुछ काम जल्दी कर सकता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वही रात और रात जो है वो दुगना चुगना और तिगना और बहुत ही आगे, तो ये बहरहाल नहीं होता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग वो हैं जिन पर सबसे ज्यादा रहम किया जाए।
अरे
लालची को सबसे बड़ा
आपने
बेवकूफ कहा जाता है, सबसे बड़ा बेवकूफ। उसकी वजह ये होती है कि उसका दिमाग उसके अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होता, उसकी आंखें खुद नहीं देख रही होती, उसकी आंखों के आगे पर्दा आया हुआ होता है। वो उन लोगों को जो सामने वाले लोग हो ना, जिनको वो देख रहा है, जिनकी वजह से वो लालच कर रहा है, वो उनकी आंखों से देख रहा होता है।
हुजूर, एक मिसाल यहाँ पर मैं अर्ज
जी
करूँ, बल्कि एक कोट यहाँ पर बात की जाती है। कहा जाता है कि लालच की पट्टी ये आंखों पे नहीं अकल पर बनती।
अरे
ये अकल से जब अंधा हो गया ना, फिर ये ऐसी डायमेंशन में दौड़ेगा जहां इसका नुकसान ही होगा, इसको सही गलत की पहचान नहीं होगी।
ऐसा ही है। तो फिर जब अकल में पट्टी बनी तो फिर रातों रात ये हो जाए वो हो जाए, फिर पैसे या उन जगहों पे भी लगा देता है कि जहां पर वो उसको बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, बस ये आप लगाओ 1 महीने में और इतना, और 2 महीने में इतना, और हफ्ते में इतना, और एक दिन की ये। तो फिर वो होता ऐसा है कि वो दोनों हाथ खाली और रोड के ऊपर, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, घर वालों को सोना बेच दिया इनका, उनका बेच दिया, इतने सारों की बद्दुआ, फिर वो साथ चल रही होती है।
इंशाल्लाह पर
तो हकीकत बात है, ये लालच जो है वो बंदे को कहीं का नहीं छोड़ती है, और इस किस्म के वाकयात और इसके जो नतज वो हमारे सामने आते रहते हैं। उलमाए
हजरत
कर
अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला की हिकायत मेरे ध्यान में आ रही
जी
है। कहा जाता है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हो जब खलीफा नहीं बने थे ना, उस वक्त आपकी नफासत का आलम यह था कि बेहतरीन और उम्दा कपड़े पहना
क्या
करते थे।
बात है,
उस दौर में 1,000 दिरहम का वो सूट पहना करते थे,
ऐसे ही
और वो भी ऐसा होता था कि कहते थे कि मैं थोड़ी देर के लिए कोई कपड़े पहनता और उसके बाद मैं कहता कि भाई ये उतारो, ये मुझे दूसरे दो, ये लोगों ने देख लिए हैं, मुझे लगता कि मेरा कपड़ा पुराना हो गया है। और ऐसे ही वो महंगे से महंगे के आइटम की तरफ चले जाते, बहुत महंगा भी आइटम उनको लाकर दिया जाता ना, तो कहते यार है तो अच्छा लेकिन अगर इससे नरम होता ना तो और बेहतर होता, ये कह के छोड़ दिया करते थे। फिर
बिल्कुल
आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, इसने आपको देखा इंतहाई सादा लिबास में, इंतहाई जिस तरह पहले खुशबू इस्तेमाल किया करते थे वैसे खुशबू भी नहीं थी। तो उसने कहा कि हजरत वो कुछ लिबासियां कहाँ गई, वो आला खुशबू कहाँ गई।
क्या बात
तो
है,
आप रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मैं जब दुनिया में किसी ओहदे या किसी मनसब पर होता था ना, तो मेरी लालच बढ़ती थी, हिर्स बढ़ती थी, तमन्ना होती थी कि इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो, और मैं उससे बेहतर की तरफ आ जाता था। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मसनद खिलाफत अता फरमा दिया, और दुनिया में इससे बढ़कर कोई मरतबा है नहीं। कहते अब मुझे इससे बढ़कर की ख्वाहिश हुई, और जो इससे बढ़कर है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
अरे
सादगी
हाँ
अख्तियार
क्या
कर रहा।
बात है, क्या बात है,
मेरे
क्या
दिल में
बात
ये बात आ गई, और अब देखो जो मेरा हाल है,
है।
अल्लाह
खाना
तबारक व तआला के
खाना
कुर्ब वाला है।
मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बातें बेशुमार हैं और वाकई टाइम हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, वरना वाकई टॉपिक ऐसा है कि जब बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें खुलती हैं, बहुत सारी बातें खुलती हैं, मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम एक नेक आमाल, जो हमारे इस्लाह आमाल का एक शोबा है, तो नेक अमल में से भी कोई ना कोई नेक अमल हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं, तो आइए देखते हैं आज का नेक अमल क्या है।
15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयतो तरीकत का जामे मजमुआ 72 नेक आमाल बसूरते सवालात अता फरमाए हैं। 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये है, क्या आपकी किसी एक या चंद से दुनियावी तौर पर जाती दोस्ती तो नहीं है? जाती दोस्तियां और ग्रुप तंजीमी कामों की तरक्की में आम तौर पर रुकावट बनते हैं।
میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک عمل دیکھا، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گھر اور معاشرے میں لالچ، لالچ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، نیکیوں کا بھی ہے تو وہ اچھا ہے، نیکیوں کا حریص ہونا، اور ایک دنیا کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، شہرت کا بھی ہے. تو آج کے ٹاپک سے متعلق یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، ذرا توجہ سے دیکھیے گا.
واقعہ کربلا جب سنتے ہیں تو اس میں ایک جگہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ابن سعد کو لالچ دی گئی تھی رے کی، گورنری کی، اور شروع میں وہ تیار نہ ہوا، اور بعد میں اس کو یہ کہ رے کی حکومت کی لالچ لے گئی کربلا کے میدان میں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا. تو اب یہ کہ اتنی بڑی مطلب کے سامنے بارگاہ اور اتنا بڑا درجہ اہل بیت اور پھر سامنے یہ، تو یہ کس طرح دل اس طرح بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی آگے کسی کام کی نہیں رہتی حکومت یا گورنری جو بھی ہے، تو یہ کس طرح مطلب کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ سامنے پتہ ہو کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اور اتنا دل پر کسی چیز کا یا محبت کا غلبہ ہو جانا، اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
دنیا کی محبت ہے ایسی، ہمارے اخباروں میں چھپتا ہی رہتا ہے نا، کبھی نہ کبھی چھپتا ہے کہ اس کی خاطر، ترکے کی خاطر باپ کو مار دیا، ماں کو قتل کر دیا، ہوتا ہے مطلب، یہ تو کبھی کبھی آتا ہے اس طرح کی خبریں. تو یہ کہ پیسوں کے لیے کہ مجھے ترکہ مل جائے، ان کو اس وقت اندھائی شیطان جو اندھا کر دیتا ہے کہ یہ پتا نہیں ہوگا پولیس کا ہاتھ پہنچ جائے گا، اور پولیس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، ترکہ مل جاتا ہے اس کو ماں باپ کا اندھے کی صورت میں گلے میں پہن کر، یہ اندھے ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت میں اور مارے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ابن سعد جو تھا، یہ بھی دنیا کی محبت میں اندھا ہو گیا. پہلے ڈرا کہ نواز رسول کا میں نہیں، پھر وہ اس کو پھسلایا گیا، اور یہ رے کی حکومت جو موجودہ تہران، ایران کا شہر ہے تہران، یہ پہلے اس کا نام رے تھا، تو یہ رے کی حکومت کے لالچ میں پھر لالچ نے غلبہ کیا، اور یہ بدبخت جو تھا اس میں آ گیا، اور نہ کرنے کا اس نے کیا، آل رسول پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور رہتی دنیا تک اس کو ملامت کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے اور رہتی دنیا تک کی جائے گی، اس سے بڑی بھول کی اس نے دنیا کی محبت میں. تو دنیا کی محبت نہیں ٹھیک، تو یہ محبت جو ہے دنیا کی یہ تمام خطاؤں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس وجہ سے آدمی بس اندھا ہو کر جیسے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، مرتا دیکھتے ہیں تب بھی یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ میں بھی مر جاؤں گا. آپ دیکھیں گے 60-70 سال کے بوڑھے جو ہیں، یہ بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کے، دھوکہ دینے کے، پیسے جمع کرنے کے، پتہ نہیں کیا ہوگا یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو کلپ بھی آپ نے دیکھا، بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے دے، با عمل بنا دے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ لالچ یہ اندھا کر دیتی ہے، لالچ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اور ایک جگہ یہ بھی میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ لالچی شخص جو ہے نا قابل رحم بھی ہے، کیونکہ لالچ اس کو خرچ بھی نہیں کرنے دیتا، بخیل بنا دیتا ہے کہ گاڑی چاہیے تو کسی اور کی پیٹرول اس کا لگ جائے، کال کرنی ہو تو میرا جو ہے وہ کال نہ لگے، اس کی کال میں یوز کر لوں، اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاں آسانی مل جائے، یہ بائک پر جانا ہے تو یار میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. ٹھیک ہے، آسانی اختیار کرنا اور بات ہے. اچھا یہ جو کھانا کھانے جا رہے ہیں، چند دوست بیٹھے ہیں تو جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، اور چلا بھی گیا تو جا کر پھنس گیا، نکل ہی نہیں رہا باہر، سائڈ نے بولا نہیں 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 آپ رہنے دیں رہنے دیں، وہ ہاتھ تو اندر گیا لیکن باہر ہی نہیں آ رہا وہ. تو ابھی دل میں لالچ کے یار یہ جو ہے وہ میرے پیسے خرچ نہ ہو، آئیں بھائی آپ کو چائے پلاتے ہیں. اب دوستوں نے کر دی ہاں کہ پیتے ہیں، چلو یار اب کیا کریں، چلو یار دیر ہو رہی ہے پھر کبھی دیکھیں گے. یہ تو لالچی شخص جو ہے وہ دوسروں سے طلب کرتا ہے، یہ مجھے کھلا دے، یہ پلا دے، یہ میری خاطر تواضع کرے، اس کا خرچ ہو، میرا خرچ نہ ہو. پھر لالچی شخص غیبتیں بھی کرتا ہے، کہیں گیا پوچھا نہیں، دیا نہیں، دیکھو ہم ان کے ساتھ بازار گئے، اپنے لیے تو 10,000-15,000 کی شاپنگ کی، ہمیں ایک شرٹ تک بھی نہیں دلوائی، ہمیں ایک جوتے تک بھی نہیں دلوائے، ہمارا بچہ ساتھ تھا یار، بچے کو دلوا دیتے. کیوں طلب کرتے ہیں دوسروں سے؟ کیوں دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں؟ اللہ نے جو دیا اس پہ صبر و شکر نہیں ہے. اسی طرح لالچی شخص اس کو طلب جب دوسروں سے ہوتی ہے نا تو اپنے خاندان کے یا محلے کے یا رشتہ داروں میں سے غریب لوگوں کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو غریب سے کوئی ریٹرن ملنا ہی نہیں ہے. غریب کبھی پریشان ہو تو کبھی پوچھے گا نہیں کہ کام ہو تو بتانا، اس کو پتا ہے اس نے بتا دیا تو میں پھنس جاؤں گا کہ بیٹی کی شادی ہے، گھر میں بیماری ہے، ذرا علاج کروا دیں. ہاں امیر کو پوچھ لیں گے اور جناب خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ پاک نے بہت دیا ہے، لیکن پھر بھی بندہ حاضر ہے، کبھی کوئی کام ہو تو بتائیے گا. پتا امیر کیا بتائے گا، لیکن آج میں پوچھ رہا ہوں، کل کو میری کوئی گوڈ اٹکی، ہو سکتا ہے یا امیر صاحب میری کچھ مدد کر دیں. تو اپنے قریب رشتہ داروں کو پوچھیں، اپنے جاننے والوں کو پوچھیں، اگر اللہ نے دیا ہے لیکن ثواب کی نیت سے پوچھیں، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پوچھیں. خالی خالی پوچھ کر اس کو تکلیف میں نہ ڈال دیں، اس کو امید دلا کے نہ آ جائیں. اور یقین کریں کہ لالچ کا جو ایک اپوزٹ کا ہے یا لالچ کا ایک حل ہے نا، دنیاوی لالچ کا، وہ یہ ہے کہ صبر، شکر اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں. یقین کریں سب سے بڑا غنی جو ہے نا وہ دل کا غنی ہے، اور سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو لالچی ہے، جس کا دل ہی نہیں بھرتا، پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. یہ دن رات پریشان رہتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہے، گاڑیاں ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہے، کوٹھی بنگلے بینک بیلنس بہت کچھ ہے، لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، کیونکہ لالچی، اس کو اور چاہیے، حل من مزید، حل من مزید. تو صبر کریں، شکر کریں، قناعت کریں، توکل کریں. اللہ پاک نے جسم جو سلامت دیا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آنکھیں جو اللہ نے دیے سلامت ہیں، یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جسم کے اور باڈی پارٹس دیکھیں، کہ یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں، کیا یہ نعمت نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ نے بہت دیا ہے. اور پھر اپنے دل سے دنیا کا لالچ، مال کا لالچ، یہ سب نکال کر اور آخرت کی طلب، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پیدا کر دے ہمیں. ہم رات کو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اپنے دل میں نیکیوں کا اور آخرت کا ایک لالچ کہہ لیں، ہرج کہہ لیں کہ میں تہجد کی نیت سے سوؤں گا. نگران شورا پچھلے دنوں ایک مشورہ فرما رہے تھے، کچھ ذمہ دار بیٹھے تھے، ایک ترغیب دلا رہے تھے تہجد کی. فرما رہے ہیں کہ رات سوتے وقت کیا تہجد کا الارم لگایا؟ یہ الارم لگانا تہجد میں اٹھنے کی تیاری ہے. اچھا میں نے اگر نہیں لگایا تو میرے ذہن میں ہے نہیں کہ میں تہجد پڑھوں گا. کیا رات سونے سے پہلے میں نے فجر کا الارم لگایا، اپنے آپ کو پریپئر کیا کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے؟ تو اگر کیا تو فجر کا ایک ہے، جاب ہو، کام ہو، ٹریولنگ ہو، تو بندہ ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے. تو اب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ کی طرف ہے، تو اب لالچ سے کیسے بچا جائے؟ اچھا برا لالچ کیا ہے؟ ہمارے دونوں بہترین مبلغین، دونوں مدنی ہیں اور ماشاءاللہ زبردست یہ باتیں کر رہے ہیں. تو خالد بھائی اور قربان بھائی، کچھ اس پر آخر میں کچھ آپ فرمائیں کہ کیا فرمائیں گے کہ اچھا لالچ کون سا، برا کون سا، اور بندہ کیسے بچے، اور اچھا لالچ اگر آخرت کا ہے تو کیسے اختیار کرے؟
اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی پیدا فرمایا ہے، دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، ایک ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ایک سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں. جو اچھی لگتی ہے اسے کیسے حاصل کریں، اور جو بری لگتی ہے اسے کیسے بچا جائے گا؟ اعمال کا ترتب، اعمال پر جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے، یا جو سزا ملنی ہے اور جو عقاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں کو بیان فرمایا ہے. نیک اعمال ہیں، اس کی حرص کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر حرص دلائی ہے، لالچ دلائی ہے بندے کو کہ یہ کرو گے تو پھر جنت ملے گی.
کیا بات، کیا بات.
برائی سے بچے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے کہ اگر تم یہ برا کام کرو گے تو پھر نتیجہ تمہارا جہنم ہے. لالچ دل میں رہے گی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دنیا کی لالچ کے بجائے آخرت کی لالچ کی طرف،
کیا بات،
ثواب کی لالچ کی طرف،
کیا بات،
کہ آخرت کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں دنیا کے انعامات کو بیان کر کے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے. اور آخرت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. تو چاہیے کہ اس لیے کوشش کریں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تو سمجھدار وہ ہے جو مٹی پر ہاتھ رکھے.
کیا بات.
کیوں؟
کیا بات.
کیونکہ اگرچہ آخرت مٹی ہے لیکن ہے تو باقی رہنے والی، بالآخر اس کی مٹھی میں رہے گی. دنیا اگرچہ سونا ہے لیکن فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. پھر ارشاد فرمایا لیکن واللہ آخرت سونا ہے. بندے کو چاہیے کہ آخرت کو ہی ہاتھ میں رکھے کہ یہ سونا بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، اور اگر اس کو ہاتھ میں رکھے گا تو کبھی نقصان نہیں ہوتا.
کیا بات ہے. سونے پہ مجھے یاد آیا، سونا مینز گولڈ، تو خواتین کے پاس ہوتا ہے، اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل دیکھتی ہوں گی. تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے ادا کرنی ہے، لیکن جب عورت کا سونا بالفرض ہو کے اب اس میں سے دینی ہے تو ایک آہ نکلتی ہے، تو یہ آہ لالچ کی وجہ سے تو نہیں کہ میرا گولڈ کم نہ ہو، جب اتنا گولڈ رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو دینی دینی ہے۔ امیر اللہ سنت کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آہ کر کے خرچ نہ کریں، واہ کر کے، لیکن جب ہمارا مال جاتا ہے تو آہ نکلتی ہے۔ اللہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی ذرہ کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ راہ خدا میں خرچ کر کے اور خرچ کریں، واہ نکلے، لیکن اللہ کی راہ میں واہ نکلتی ہے کہ آہ نکلتی ہے، ہم خود اپنے دل پر اپنی کیفیت پر غور کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے قربان بھائی؟
جی، علماء نے جہاں پہ لالچ سے بچنے کے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے، اس میں سے پہلے لالچ کی جو نحوست ہے، ایک بیان کی حسد، کہ لالچ کی وجہ سے بندے کے اندر حسد آتا ہے، اکڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اپنا خون جلاتا رہتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ غیبتیں کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں حلال کا کما رہا ہے، حلال کا کما رہا ہے، کیسا کما رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح اس کے اندر اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا لالچ کی ایک نحوست یہ ہے، اس نحوست کا وبال دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت بیٹھ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ گر رہا ہے، گناہ اپنے جو اعمال ہے نام اعمال اس کے اندر وہ سمیٹ رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ یہ کام کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بھی عطا فرمائے، اس لیے تو جل رہا ہے نا، کوڑا حسد کر رہا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے وہ اتنی دیر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا مانگ لے۔ کیونکہ میں اور آپ، میں اگر کسی کو دوں گا تو کتنا دے دوں گا، ایک لمٹ آئے گی، وہ لمٹ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے رب سے مانگا جس رب نے اس کو دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے وہ حسد کر رہا ہے، اس رب سے مانگے، اس رب کے بارگاہ میں، اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا دے گا کہ مالا مال فرما دے گا،
رب نے دیا
ہے،
رجوع لگا
نہیں مانگے۔
صحیح کہہ رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے مال کی طرف کیوں نظر رکھیں، اگر کسی کے پاس مال ہے بھی تو رب نے دیا ہے، رب سے مانگے، جائز طریقے سے مانگے، اللہ دے گا، دیتا ہی اور دے ہی رہا ہے، کب بھوکے سوتے ہیں، کب بھوکے اٹھتے ہیں۔ اچھا، لالچ مینس ہٹس، تو بچوں میں بھی بعض اوقات یہ ہٹس کی عادت ہوتی ہے، بچہ بچہ یہ کرے گا، میں یہ لے لوں، اس کے ٹوائس لے لوں، بعض اوقات کہیں جاتے ہیں تو کسی کے کھلونے دیکھیں تو میں اس کا کھلونا لے جاؤں، جاتے جاتے ہوتے ہیں بچے روتے ہیں کہ یہ لے جاؤں، تو سمجھدار ماں باپ تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، کھانے کے حریص بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کیک اٹھایا پورا، یوں کھا لیا، تو فلاں چیز کھا لی تو پورا منہ پہ لگا لی، اور ابھی شروع بھی نہیں کیا تو بچے نے اٹھانا شروع کر دی، تو بچے کا بچہ بچہ ہی ہے، لیکن تربیت تو ہونا، اس کو سمجھایا جائے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، بڑے کھانے کے حریص، تو آج کل تو کھانے کا تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے،
جی کھانے کے لیے رہے،
ہاں جی کھانے کے لیے جی رہے، لگتا ہے کہ بس جو ہے نا ہماری سانسیں آکسیجن کھانے پر ہے۔ یقین کریں کہ اب جو ینگسٹرس ہیں شاید ان کو ابھی فیل نہ ہوتا ہو، اب میری اپنی ایج 50+ ہو گئی ہے، جب اب بہت سارے امراض آ جاتے ہیں، جب ایج بڑھتی ہے، ویٹ بڑھتا ہے، تو جگر کا پرابلم، معدے کا پرابلم، چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، آئلی چیزیں یہ نہیں ہوتی، لیکن جب کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہے، تو اب اس وقت بندہ سوچتا ہے میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، پکوڑے بھی کھا لوں، سموسے بھی کھا لوں، کباب بھی کھا لوں، برگر بھی کھا لوں، ابھی کھام دوپہر کو کھایا تھا، شام کو بھی کھا لوں، رات کو بھی کھا لوں، لیٹ نائٹ بھی کھا لوں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے بچے، میرے بچیا، میرے بہن، میرے بھائی، جو بھی سن رہے ہیں، آج کل تو آن لائن آ جاتا ہے، رات کو بھوک لگی، چلے بھائی اٹھائے موبائل، گھمائے کسی ایپ پر، ابھی جو ہے نا گھر پر آن لائن آ جائے گا، پیزا آ گئے، رول آ گئے، پراٹھے آ گئے، برگر آ گئے، یہ صحت بگاڑتے ہیں، اس سے انرجی نہیں ملتی ہے، یہ جو اس طرح کے فوڈز ہیں یہ، لیکن یہ بھی کھانے کی ہٹس اور لالچ ہے، فرائز کھا رہے ہیں، فرائز آئٹم تو اور نقصان کرتی ہے، تو کھانے کی ہٹس بھی ختم کریں، یہ بھی لالچ ہے، صحت کو برباد کر رہا ہے، آپ کو انرجی نہیں مل رہی ہے یہ۔ تو کون سا لالچ اچھا ہے، کون سا برا ہے، ہمارے مبلغین نے بھی بتایا، تو گناہوں میں بھی تو بندہ لگ جاتا ہے نا، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو آج یہ دیکھا پروگرام، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر اگر پیدا کرنا ہے تو نیکیوں کا لالچ، نیکیوں کے حریص بنیے کہ میں پانچوں نمازیں با جماعت پڑھوں گا، میں تلاوت قرآن پاک کروں گا، فجر کی نماز مسجد میں با جماعت جا کر پڑھوں گا، میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کروں گا، اسلامی بہنیں ہیں تو وہ نیت کریں کہ ہم گھر میں درس دیں گے، اس کی نیت کریں کہ ہم نیک اعمال پر عمل کریں گے، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں گے، یہ بھی تو ایک ہے نا آخرت کا لالچ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو دنیا طلبی جو ہے وہ اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، لمبی لمبی امیدیں ہمارے دل سے نکال دے، اور ہمیں آخرت کے لیے عمل کرنے والا بنا دے، اے مولا تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے کہ بس آخرت کی محبت ہو جائے، ہمارے دل میں اگر کوئی ہرس پیدا بھی ہو تو آخرت کا ہو، نیکیوں کا ہو، اور اے اللہ بس تو راضی ہو جائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔